ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का एक पुराना गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जीता कौन? बलवान जीता या निर्बल जीता? अच्छा, आपने स्कूल में, मेरे ख्याल में सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, आपने स्कूल में कछुए और खरगोश की कहानी भी पढ़ी होगी, तो जीता कौन? कछुआ। अब आप देखो कि आपने ब्रह्मा बाबा की इस दुनिया में स्थापना के कार्य का इतिहास अब तक का पढ़ा होगा, और अब तो आप खुद ही इसके अंदर हैं, तो कौन जीतेगा? दुनिया जीतेगी, माया जीतेगी, या बाबा के बच्चे जीतेंगे? वाह, आवाज तो आई है, कुछ मजेदार नहीं आई। कौन जीतेगा? हाँ, था तो अकेला ब्रह्मा बाबा, तो एक अकेला ब्रह्मा बाबा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो हम सब के रोज के जीवन से संबंधित है। टॉपिक तो मैं भूल गया क्या था, वो स्व स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला। अच्छा, अब आप देखिए, जब भी कोई मुकाबला होता है, पहले 30-40 साल पहले दिल्ली में पहलवानों की कुश्ती होती थी, तो पोस्टर लगते थे कि दारा सिंह और किंग कॉन्ग, इस तरह के पहलवान होते थे, वो कुश्ती करते थे, लोग देखने जाते थे। तो उसमें तीन प्रकार के पहलवान होते थे, टॉप वाले लास्ट में कुश्ती करते थे, पहले एक छोटे वाले करते थे, फिर बीच वाले करते थे, फिर बड़े वाले करते थे। लेकिन हर जोड़ी बराबर की होती थी, नहीं तो कुश्ती का किसी को मजा ही क्या आएगा। चाहे वो थर्ड ग्रेड वाले थे, वो भी आपस में बराबर की टक्कर के होते थे, सेकंड वाले भी और फर्स्ट वाले भी। इसलिए यहां पर भगवान कहता है, मैं ऑलमाइटी हूं, तो मैं बराबर की टक्कर वाले नहीं रखता हूं, एक बिल्कुल निर्बल और एक बिल्कुल बलवान, और फिर मैं बलवान पर निर्बल की जीत पर रहता हूं। इसलिए तो हम सब कौन से निश्चय के आधार पर समझते हैं क्या हम निर्बल ही थे या हम जीत जाएंगे? कोई निश्चय तो होगा ना हमारे अंदर, वो कौन सा निश्चय था? तो सब कह देंगे बाबा का, बाबा साथ है, है ना? अब आप सोचो कि बाबा कुश्ती करेगा हमारे साथ के नहीं, या वो गाइड करेगा सिर्फ, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। तो आप सोचो, सबसे बड़ा निश्चय ये है कि जो भी हमारे आगे परिस्थिति आती है वो कोई नई नहीं है। हमको पता है आज हम यहाँ बैठे हैं तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करके यहाँ बैठे हैं, अब भी कुछ परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन हर परिस्थिति हमने अनेक बार पास की है, कल्प कल्प पास की है, और अब तक की भी की है, जो आगे होनी है वो भी हमने की हुई है। जब किसी को निश्चय है कि मैं सारी परिस्थितियां पास करके आज भी बैठा हूं, तो उसको कोई डाउट हो सकता है? एक तो ये, दूसरे हमारे बाबा साथ है। इसलिए बाबा ने हमको स्लोगन दिया, क्या? विजय तुम्हारा, सफलता तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के बच्चे असफल हो ही नहीं सकते। इसलिए जिसको पक्का पता हो, सफलता हो, निश्चित है। एक तो होता है किसी को एक बात में सफलता मिली, स्टेज पर आता है, उसको लोग हार पहनाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, तो लोग ताली बजाते हैं। लेकिन जिनकी हर काम में सफलता का पक्का ही है, उनको ताली नहीं बजानी चाहिए क्या? सोचो जरा। ताली ऐसी बजनी चाहिए कि जो आप समझ सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, क्या हमारा कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारी परिस्थितियों से छुटकारा हो जाएगा? ये अंत तक हम परिस्थितियों के साथ ही लड़ते रहेंगे और विजय पाते रहेंगे? क्या ख्याल है? ताजी मुरली से बताओ कि क्या हमारा ऐसा शुभ दिन आएगा जिस दिन हमें परिस्थितियां जो है तंग करना बंद कर देंगी, हैं? ये अंत तक आती रहेंगी। अब मैं हाथ तो उठवा नहीं सकता, मेरी नजर इतनी दूर जाएगी नहीं, परंतु आप सोच सकते हैं कि बाबा ने बताया है कि अंत में आकर के परिस्थितियां अपने आप, जैसे वो दिए और तूफान में है कि तूफान अपने आप ही वापस चले जाता है, तो परिस्थितियां तो होंगी लेकिन आपकी परीक्षा नहीं लेंगी, वो दूर से ही सलाम करेंगी। क्योंकि युद्ध तब होता है जब दो बराबर की बात हो। जब एक बहुत शक्तिशाली हो जाए तो दूसरा युद्ध नहीं करता, वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि वो क्या लड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है कि अंत में हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और कर्मातीत अवस्था वाले को युद्ध नहीं करना पड़ेगा। परिस्थिति आएगी लेकिन दूर दूर रहेगी। तो इसलिए आज हम स्वस्थिति और परिस्थिति इस विषय के ऊपर जरा और सोचते हैं। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो वो सोचते हैं कि देखो, बाबा के बन गए, सब कुछ दुनिया का त्याग दिया, हम किसी के घर जाते नहीं, कोई दुनिया के साथ मिलते जुलते नहीं, तो हमारे तो परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे बन गए ना, हमारे को परिस्थिति आनी नहीं चाहिए। मान लो कोई बीमारी फैल जाती, कोरोना फैल जाता है, तो बाबा के बच्चे सोचते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में से कोई भी बीके को कोरोना से शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। या आजकल एक लड़ाई हो रही है एक देश में, वहां बाबा के कई सारे सेंटर हैं, तो कई बच्चे सोचते हैं बाबा ने कहा हुआ है कि सेंटर सेफ हैं, इसलिए बाबा के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को थोड़ा बहुत हो जाए तो कई बच्चे संशय में चले जाते हैं, ये क्या हुआ, हम बाबा के बच्चे बने फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया। तो इस बात को भी आपने सोचना है कि क्या बाबा का बच्चा बनने के कारण और दुनिया से किनारा करने के कारण हम परिस्थिति से बच सकते हैं। शरीर छोड़ना तो एक और बात है, उसकी भी बात करेंगे। कई तो ये हैं। दूसरे क्या हैं? वो कहते परिस्थिति आ तो जाएगी। बाबा ने कहा वो अंत तक तुम्हारी परीक्षा होती रहेगी। जिस दिन तुम्हारी परीक्षा बंद हो गई, जिस दिन कर्मातीत बन गए, तुम शरीर में नहीं रह सकते, बाबा कहता। इसलिए परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हम परिस्थिति के साथ जब सामना करेंगे तो बाबा हमारी मदद करेगा। ये दूसरी तरह के हैं। बाबा ने क्या कहा हुआ है इस बारे में? बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाएगा, अच्छी तरह पढ़ाएगा, पर परीक्षा के वक्त टीचर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर फेल हो गए दोबारा पढ़ाएगा और बढ़िया पढ़ाएगा, लेकिन परीक्षा किसको देनी है, टीचर को या स्टूडेंट को? बोलो जी। और बच्चे क्या उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई भी बाबा और परीक्षा भी बाबा ही देखे आ जाए, तो होगी ना दिक्कत। अच्छा, कई फिर ऐसे हैं, वो समझते हैं कि बाबा ने हमें बच्चा बनाया, हम बाबा के बच्चे बन गए, 100% बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, जरा भी पतिव्रता की तरह चलते हैं। इसलिए परीक्षा कितनी भी आ जाए, लेकिन हमारी विजय होनी ही होनी है। उनको किसी परीक्षा की चिंता नहीं, क्योंकि एक होती है परीक्षा और एक होती है परीक्षा की चिंता। परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितनी उसकी चिंता कठिन होती है। किसी व्यक्ति को आप देखो कि कुछ कह दिया जाए ये हो सकता है तुम्हारे साथ, अब वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, बेफिक्र बादशाह की जगह फिक्र वाला बन जाता है। हो या ना हो, घटना घटे या ना घटे, क्योंकि बाबा ने हमको कहा है मेरे बच्चे बनकर परीक्षाएं कुछ भी आए, शरीर की आए, बाहर से आए, अंदर से आए, तुमको फिक्र नहीं कर सकते, बेफिक्र बादशाह टाइटल दिया है। अब जैसे कहते हैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं? सोचने की बात है। एक बादशाह थे, वो सारा दिन अपनी राजधानी में घूमते रहे, थक गए, तो रात को महल में आए तो अपने दरबान को कहा कि हम बहुत थके हुए हैं, आज भोजन वगैरह कुछ नहीं करना, हम सीधा ही सोना चाहते हैं। उसने कहा हजूर जहां बना अपने महल में आइए, सोने कक्ष में सोइए। जब वो उसके अंदर जाने लगे तो दरबान ने कहा हजूर यहाँ आज एक काला सांप देखा गया था आपके कमरे में, हमने बहुत ढूंढा मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो बादशाह हैं, आपकी तो सारी सल्तनत, आपको क्या कहेगा, आप सो जाइए। आप बताइए सांप तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी तब मिलेगा, लेकिन बादशाह सलामत तो क्या होगा, सोएंगे नहीं, उनको हर तरफ सांप ही दिखेगा, वो ऊपर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, तो होगी ना चिंता। तो ये चिंता का भी हमारे पास इलाज होना चाहिए, नहीं तो बाबा के बच्चे और दुनिया वाले अगर एक ही तरह के हो गए तो पता कैसे लगेगा, ठीक है ना? इसलिए बाबा ने हमको एक ऐसा ज्ञान दिया हुआ, अगर हम उसके स्मृति में रहें और उसका अभ्यास करें तो हमको चिंता हो ही नहीं सकती। ज्ञान सिंपल है, विनाशी और अविनाशी का। ये सांप जो है वो शरीर को खत्म कर सकता है, आत्मा को तो कोई सांप नहीं दस सकता, वो दूसरे सांप है, पांच सिर वाले हैं। इसलिए अगर हम पक्का सोच लें, ज्ञान से भी सोच सकते हैं कि सांप कहीं भी होगा लेकिन वो काटेगा उसको ही जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट होगी। एक झाड़ी के अंदर सांप बैठा है, साथ में पगडंडी जा रही है, कई मुसाफिर जा रहे हैं, सांप 11 को छोड़ देता है, 12वें के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है, तो क्या करेगा वो, 12वें कोई काटेगा ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर हम ये भी सोच लें कि अगर मेरे साथ कुछ होना है तो होना ही है, होनी टल नहीं सकती, और नहीं होना तो कोई भी नहीं उसको कर सकता। दुनिया में कहा जाता है भगवान भी नहीं इसको रोक सकता, तो फिर चिंता कहेगी। लेकिन फिर भी चिंता है, क्यों चिंता है, कि देह भान है, शरीर अपने आप को समेटे हैं, मैं मर ना जाऊं, ये मुझे काटेगा, मेरे को काला काला हो जाएगा आदि आदि। तो इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु से भी ज्यादा भय मृत्यु होने का होता है। अब किसी के सिर के पीछे पिस्टल रख दो और बोलो जान चाहिए या पैसा दोगे, वो क्या कहेगा, सारा पैसा ले लो मेरी जान छोड़ दो। और उसको सीधी पिस्टल लग जाए तो कम तकलीफ है, लेकिन जब तक उसके पिस्टल रखी हुई है उसकी बहुत तकलीफ है। आज भी जो युद्ध हो रहा है उसमें तकलीफ किसका, जो बच गए, बचने वाले को तकलीफ है, वो शरीर छोड़ने वाले तो सेकंड में मच्छर की तरह गए। इसलिए आप देखेंगे कोई बच गया, कोई नारी बच गई, कोई बच्चा बच गया, लोग कहते हैं बेचारे का क्या होगा, साथ ही जले जाता तो उसको तकलीफ तो नहीं होती। तो ये दुनिया ऐसी है जहां मृत्यु आसान है, जीना मुश्किल है। तो बाबा इसलिए हमें कहता है मैंने आपको बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष होता है, बीज बचा रहे तो कोई वृक्ष ले भी जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरा वृक्ष पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर हमारे सारे संस्कार, शरीर तो उस संस्कार को प्ले कर रहा है, एक शरीर छोड़ दोगे दूसरे में प्ले करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीव घात महापाप है, कोई सोचे मैं शरीर छोड़ के दुखों से मुक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता। हर आप भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं, हर नगर के अंदर बड़े शहर के अंदर एक कलेक्टर होता है, उसका नाम होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा, अब उस कलेक्टर को 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रखती सरकार, क्योंकि अगर वो 3 साल से ज्यादा रह जाएगा तो मित्रता बना लेगा, किसी का फायदा करेगा, पक्षपात करेगा, तो 3 साल के बाद बदल देते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में बदल देते हैं। अच्छा, अब कभी कलेक्टर को फील नहीं होता मेरा बंगला क्यों छुड़वा रहे हो, मेरा दफ्तर क्यों छुड़वा रहे हो, मेरे चपरासी क्यों छुड़वा रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ मिला हुआ है जब मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा वहां भी कलेक्टर का बंगला होगा, कलेक्टर का ऑफिस होगा, कलेक्टर की सब पावर होगी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा हुआ कि हमको तो आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा के ज्ञान वाले को परिस्थिति आएगी तो क्या करेगा, या तो परिस्थिति मेरा पिछला हिसाब चुकतू करने आई है तो भी वेलकम है, क्योंकि उसके पास ही उधार वाला लेने जाता है जिसको जो दे के चुकतू कर सके, या परिस्थिति मुझे पकड़ मुझे अगली क्लास में चढ़ाने के लिए आई है तो मुझे तकलीफ क्या है। मैं तो कहूंगा कई जो कहते हैं परिस्थिति आई ना, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ही हमारी तरफ से परीक्षा दे दे ایسا نہیں ہے. ہم سب جب اسکول میں پڑھتے تھے تو پانچویں کلاس میں جو پیپر آتا تھا ہم اس وقت سوچتے تھے کہ دنیا کا سب سے مشکل پیپر یہی ہے. جب ہم پانچویں میں پڑھتے تھے پیپر آتا تھا تو کیا کہتے تھے, یہ تو مصیبت آ گئی, دنیا میں اس سے مشکل پیپر ہے ہی نہیں. اچھا اب پریکشا ہو گئی, پریکشا کے بعد کوئی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتا ہے, کوئی سیکنڈ میں ہوتا ہے, کوئی تھرڈ میں بھی ہوتا ہے. ایک بار آپ نے پانچویں کا امتحان پاس کر لیا, چاہے تھرڈ ڈویژن میں ہی کر لیا, ساری زندگی آپ کو دوبارہ پانچویں کا امتحان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا, بس یہ بات ہے. اب آپ چھٹی میں آ گئے, اب چھٹی میں کیا ہوگا, جو تھرڈ ڈویژن میں آیا وہ کوشش کرے گا کہ میں محنت کر کے فرسٹ میں آ جاؤں, آ سکتا ہے. لیکن جب چھٹی کی پریکشا آئے گی تو وہ سوچے گا اس میں پانچویں والا تو کوئی پرشن ہے ہی نہیں, سارے نئے پرشن ہیں, اتنا بڑا مصیبت کا امتحان تو میں نے زندگی میں نہیں دیا, اچھا پھر چھٹی کا دے دے گا. اس پرکار سے ہر پریکشا میں وہ یہ سمجھے گا سب سے بڑی پریکشا یہی ہے. ایسے ہی بابا کہتا ہے مایا ہمارا پیپر لیتی ہے, پرستھتی کو پیدا کرتی ہے. اب وہ پیپر جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مایا کو تو ہم نے جان گئے ہیں, مایا یہ ہوتی ہے, مایا یہ ہوتی ہے, مایا یہ ہوتی ہے, لیکن یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مایا اس روپ میں بھی آئے گی, کیونکہ اب نئی پریکشا ہے تو مایا نیا روپ لے کے آئے گی. اچھا پھر ہم اس کو پار کر لیتے ہیں, چاہے یدھ کر کے کریں چاہے کم یدھ کر کے کریں, پھر مایا اگلی باری پھر اور نئے روپ میں آ جاتی ہے. اس لیے بابا کہتا ہے کہ اگر پریکشا نہ آئے تو ہمیں پتا کیسے لگے کہ ہماری اوستھا اوپر چڑھی ہے. اگر کوئی پریکشا میں فیل ہوتا ہے تو اس کو ساودھانی ملتی ہے کہ بھائی تم دوبارہ سے کوشش کرو, یہ تم فیل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پریکشا ہے یہ ہمارے کلیان کے لیے ہے. اگر پریکشا ہی نہ آئے تو جو سنیاسیوں کا حال ہوتا ہے, سنیاسی لوگ جنگل میں چلے جاتے ہیں گھر باہر چھوڑ کے اور کفا میں بیٹھ جاتے ہیں, میں نے کرودھ کو چھوڑا, میں نے کرودھ کو چھوڑا, میں نے کرودھ کو چھوڑا, بس کرودھ کو چھوڑا, کرودھ چھوٹ گیا, میں نے کام کو چھوڑا, میں نے کام کو چھوڑا, ایک سال وہ یہی کرتے رہتے ہیں, پریکشا تو آئی نہیں. لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں کرودھ بھی آ جاتا ہے, کام بھی آ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے یدھ کر کے جیتا تو ہے نہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب نشانہ لگانا سکھاتے ہیں بندوق سے تو سامنے مٹی کا کبوتر رکھ دیتے ہیں, مٹی کے کبوتر رکھ دیتے ہیں تم سیکھو, تو دھیرے دھیرے وہ سیکھنے والا بالکل کبوتر کو نشانہ لگانا سیکھ جاتا ہے, بالکل پکا. 20 باری کہو گے تو 18 باری لگا دے گا. اب کہیں گے پاس ہو گیا, اب اس کو آرمی میں بھیج دو آگے یدھ کرنے کے لیے, تو وہاں مٹی کے کبوتر تو نہیں ہے نا سامنے, اس سے پہلے کہ یہ بندوق اٹھائے اس کو مار ڈالیں گے. اور اس لیے بابا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل سچویشن میں تمہارا گرست ویوہار نہیں چھڑاتا, نہیں تو تمہیں سینٹر دے دیتا ہوں. کوئی نہ کوئی کرم یوگی ہیں, اس میں ضرور پریکشا نیت ہے, ہونی ہے پریکشا, نہیں تو کیا ہوتا ہے, سامنے سے دشمن آ رہا ہے, ہال کے بالکل پیچھے سے مایا چلی آ رہی ہے, میرے پاس پسٹل ہے تو میں پسٹل چلانا شروع کر دیتا ہوں, پر پسٹل کی گولی تو یہاں تک ہی جاتی ہے, تو مایا تیزی سے آ رہی ہے, میں پسٹل چلائے جا رہا ہوں, مایا اور نزدیک آ رہی ہے, پھر میں سوچتا ہوں مایا تو آ گئی, پھر میں ایک توپ ہوتا ہے توپ, تو میں کہتا ہوں توپ چلا دیتا ہوں, اب مایا یہاں آ گئی, میں توپ چلاتا ہوں, اس کا گولا وہاں جا کے لگتا ہے, تو مایا مجھے یہاں سے پکڑ لیتی. سمجھا آپ نے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہتھیار تو سب ہیں, لیکن کس ہتھیار کو کس سمے یوز کرنا ہے, اگر اس سینک نے نہیں سیکھا ہوگا تو ہتھیار ہوتے ہوئے بھی ہار جائے گا. اب اسی لیے بابا کہتے ہیں تم کو اشٹ شکتیاں دی ہوئی ہیں. اشٹ تو نام ہے, بہت شکتیاں دی ہوئی ہیں, لیکن کس سمے کون سی شکتی کو یوز کرنا ہے, اگر وہ نہیں آئے گا آپ کو سہن کرنا چاہیے, آپ سامنا کر لیتے ہیں, آپ کو سمانا چاہیے, آپ پھیلا دیتے ہیں, تو کیا ہوگا, وہ شکتی کام نہیں کرے گی. آپ کہیں گے شکتی بھی ہے, میں یوز بھی کر رہا ہوں, پھر بھی میں ہار رہا ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سنگم پر آپ دیکھو گے ستیوگ اور کلیوگ میں فرق کیا ہے. ستیوگ میں مان لو ہمیں یہاں ہی ستیوگ لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, ستیوگ میں ہر چیز ٹھیک سمے پر, ٹھیک استھان پر اور ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز ٹھیک سمے پر, ٹھیک استھان پر اور ٹھیک ودھی سے ہوتی ہے, سکھ ہی سکھ ہے. اور کلیوگ میں یہ تو ہم جانتے ہیں, کلیوگ میں کسی کو بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں سمے استھان کا مطلب ہی نہیں ہے, یہ کھو گیا کلیوگ. تو اسی کارن سے سب لوگ کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں, ہمارے اندر گن بھی ہیں, ہمارے اندر شکتیاں بھی ہیں, پھر ہم اتنے بے فکر کیوں نہیں ہیں, اتنے خوشی میں کیوں نہیں ہیں. سنگم یوگ بھی ہے, مرلی بھی سنتے ہیں, بابا بھی ہمارے ساتھ ہے, کارن یہی ہے. آپ دیکھیں گے بابا نے کہا ہوا, گیتا میں بھی لکھا ہوا کہ مجھے جو ہوں جتنا ہوں جیسا ہوں ویسا یاد کرو گے تو میں ملوں گا. مان لو آپ نے ٹیلی فون گھمانا ہے کسی کو, سارے نمبر ٹھیک ہیں, ایک غلط لگ جائے آپ کہیں گے 9 نمبر تو ٹھیک ہیں, دسواں ہی غلط لگا نا, وہ نہیں ملے گا. کسی کی لاٹری آ جائے, لاٹری کا نتیجہ نکل رہا ہے, وہ ہال میں بیٹھا ہے, پہلا نمبر بھی اس کا نمبر مل جائے, دوسرا بھی مل جائے, جب لاسٹ نمبر تو چینج ہو جائے اس کو تو کچھ نہیں ملا, کیونکہ ایک نمبر سے فائنل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ہم کو چیک کرنا ہے, کیا چیک کرنا ہے, کہ ہمیں سوستھتی ہماری ایسی ہو جو پرستھتی دور سے ہی نمسکار کر کے چلی جائے, مایا آئے لیکن دور سے ہی سلام کر کے چلی جائے, کہ ہمیں ٹھیک سمے پر ٹھیک کام کرنا. اب امرت ویلا لے لو, ہر ایک کو امرت ویلے کا اچھا انبھو ہے. بابا کہتے ہیں میں نے کوئی کشٹ آپ کو نہیں دیا, مالا پھیرنے کو نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, کیول امرت ویلے اٹھ کر بیٹھ جاؤ آ کے, باقی کام میں کروں گا. اچھی طرح ڈیوٹی سمجھ کے نہیں, پریم سے بیٹھ جاؤ, جیسے کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے اس کو چنتا نہیں ہوتی مجھے کھانا کون دے گا, اچھا اچھا ہر چیز دھیان رکھتے ہیں. تو بابا کے پاس بیٹھ جاؤ. اچھا بابا کہتا میں آپ ہی تمہارا سب دیکھ کے جو وردان دینا ہے جو بھر دوں گا, آپ کا ٹینک بھر دوں گا, لیکن سارا دن ایکٹیو رہیں گے, تکلیف کب ہوتی ہے, جب امرت ویلے اٹھتے ہیں اسی وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کہ ساری ہڈیاں جیسے کسی نے توڑ دی ہوں, پرانی نہیں ہے شریر میں, اٹھنا تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے, دکھ بھی رہا ہے امرت ویلا ہو گیا ہے, پر شریر چل ہی نہیں رہا, ہل ہی نہیں رہا. اچھا پھر تھوڑا ہمت بھرتے, نہیں بابا نے کہا ہوا امرت ویلا ہے, अच्छा थोड़ा सा उठते हैं, फिर कहते हैं आज तो मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे ये काम है, थोड़ा रेस्ट कर लो है, क्योंकि सारा दिन का काम बिगड़ जाए ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इम्पोर्टेंट काम करना है। तो यही लेते लेते योग लगा लो, योग ही लगा रहे ना। और बाबा कहता है कि हॉल में जाके नहीं लगाना, नहीं तो तुम्हारे वाइब्रेशन दूसरों का नुकसान करेंगे, तो मैं दूसरों का नुकसान क्यों करूं। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे कि बस योग लगाना है ना। बाबा ने कहा उठ चलते फिरते उठते बैठते जगाओ, तो मैं योग लगा लो, शरीर को थोड़ा आराम दे दो। फिर क्या होता है, फिर आंख उसी वक्त खुलती है जब अमृत वेला पूरा हो जाए। घड़ी में देखोगे तो ठीक 4:45 बज गए, इस पर ताली बजाओ ना। अच्छा। बाबा ने कल परसों भी कहा है कि रात को जागो लेकिन बैठकर योग लगाना। कितना आसान है कि ऑलमाइटी भगवान आपसे प्रॉमिस कर रहा है कुछ नहीं करना, मैंने खास टाइम रखा हुआ, उसने भी जानबूझ के वो टाइम रखा हुआ कि देखो बच्चे क्या करते हैं। अच्छा, फिर अगर उसी वक्त मान लो आपकी खाट के नीचे एक काला सांप आके हूं हूं करने लगे, तन डोले मन डोले, तो फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे कि हड्ड टूटे हुए हैं, है खाट पर बैठकर भी ऐसे सोचे कि पता नहीं कब आ जाए। तो है तो कुछ नहीं, मन की बात है। और भी कोई व्यक्ति कितना अभ्यास करता रहे तो उसका नेचुरल आंख खुल जाती है। अगर आप रोज मान लो 4:45 उठते हो तो आप रात के 1 बजे सोए हो, कल्चरल प्रोग्राम देख के, बाबा ने कहा है ना कल्चरल प्रोग्राम में सारे प्रेजेंट रहेंगे, और अगर क्लास देखोगे तो आधी जा चुकी होगी। तो कल्चरल प्रोग्राम को बंद कर दें, अभी 11 बज गए, नहीं नहीं अमृत वेले उठना है, कोई बात नहीं हम उठ जाएंगे। अच्छा, आंख खुल जाएगी क्योंकि रोज की आदत है वर्षों की, ठीक 4:45 आंख खुल जाएगी, फिर क्या होगा, चेतना में आएंगे, फिर घड़ी देखेंगे, मैं रात को 12 बजे सोया था, जरूर मैं थका हुआ हूं। अच्छा, पहले बॉडी कॉन्शियस नहीं था, नेचुरल उठ गए हैं, जरूर मैं थका हुआ हूं, सो जाओ। इस प्रकार से बाबा कहता है। और बात कि योग में बैठेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी धारणा की पॉइंट आएगी। बाबा ने मुरली में कहा है बच्चे अपने भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे किसी से का दुश्मनी नहीं, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए तुम्हें, आदि आदि। बैठे योग में है, पॉइंट ज्ञान के आ रहे हैं। अच्छा, फिर मुरली चलेगी तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा सब्जेक्ट योग है, मैं मुरली भी सुनता रहता हूँ, परम पांचों धाम की यात्रा भी करता रहता हूँ। सार क्या निकला, सोना चाहेंगे तो नींद नहीं आएगी, देर से आएगी, जागना चाहे तो आंख तकलीफ से खुलेगी। कलयुगी लोगों का भी यही हाल है। अर्थ क्या हुआ कि समय पर जो चीज करनी चाहिए समय पर नहीं हुई, समय के आगे पीछे हो गए। कोई बहुत बड़ा सिंगर गीत गाने वाला हो, बड़ा अच्छा, अगर वो रात के 12 बजे गीत गाना शुरू कर दे अपने घर में तो क्या होगा, लोग कहेंगे हमें तो सोने दो, है ना। तो इसलिए अच्छी चीज भी अगर उसका समय चेंज हो जाए, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अगर आपकी गाड़ी जानी है और आधा मिनट भी लेट हो गया गाड़ी तो गई। इसलिए हमारी तपस्या का मुख्य विषय यही है, अपने मन को हम जब चाहें जहां चाहें जितना समय चाहे उतना लगा सके और वापस भी ला सके, बस ये हमारी तपस्या या योग उसका सक्सेस है। वरना क्या होगा कि हम लगाना चाहेंगे कहीं, लग जाएगा कहीं। आप बैठते हो, मैंने परम धाम जाना है, थोड़ी देर में देखो तो क्या होगा, बृहस्पति की जगह शनि पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर वहां ही मस्त रहेंगे, फिर कहेंगे अरे मुझे तो परम धाम जाना था, फिर नीचे आ जाएंगे। तो परम धाम जाने के लिए बहुत थोड़ा टाइम जाएंगे। तब बाबा कहता है तो फिर सतयुग में जो हर चीज ठीक समय पर ठीक स्थान पर ठीक विधि से होती कैसे करेंगे, फिर हमारी कंट्रोलिंग पावर क्या रही। बाबा ने यहां तक कह दिया है कि रबड़ी मलाई खाने को दिल करता है ना, तो कंट्रोलिंग पावर कहां तक रही है, तो छोटी बात, अरे रबड़ी मलाई तो खाई है, और चक्करधारी जी ने और भी सुना दिया, गरम समोसा कल खाया ना, किस किस ने खाया गरम समोसा। अच्छा अब है तो छोटी बात, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो गई। इसलिए भारत के अंदर समय का महत्व बताने के लिए आप जानते हैं मुहूर्त रखा हुआ, पार्लियामेंट का एमपी भी मुहूर्त देखकर शपथ लेता है कि शुभ मुहूर्त है, घर की ओपनिंग करानी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम करना हो, कोई खुशी का मौका हो, मकान का कुछ भी करना हो तो मुहूर्त है। हमारे देश में गंगा में भी नहाना हो तो गंगा तो सारे इंडिया में बहती है, पहले तो उसका शुभ दिन होना चाहिए, फिर दिन के बाद भी शुभ मुहूर्त होना चाहिए। इस वक्त नहाओगे तो ज्यादा पुण्य है, चाहे ठंड में शरीर कांपे। क्या मतलब हुआ, समय को महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। अब आता है हर चीज ठीक स्थान पर होनी चाहिए, स्थान को भी बड़ा महत्व दिया गया है। अर्थात अगर हमने कोई काम करना है तो रॉन्ग ढंग से करें, गलत जगह पर करें तो क्या होगा। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना है, आप इंटरनेशनल पे पहुंच जाओ तो क्या होगा। तो इसलिए स्थान की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो काम आपने किचन में करना है वो आप ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते, बेडरूम में नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा और काम होगा तो सज धज के आएंगे, बाबा की मुरली सुननी है तो चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लो, कल वाले पहन लो, स्टेज पर आके भाषण करना होगा तो बढ़िया निकाल के पहनेंगे, नहीं तो वहां ठीक है। तो बाबा कहता मैं ये भी देखता हूँ, अपने घर में बच्चे का जन्म देगा तो बढ़िया फल महंगे खरीद के लाएंगे, बाबा के भोग के लिए अभी दर्जन सस्ती कौन सी है, दे दे चल। तो बाबा कहते मैं सब नोट करता हूँ। इसलिए ये सारी बातें वो हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या देखता है कि ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो समय स्थान और फिर विधि, विधि मैंने मर्यादा, हम समझते हैं जो मर्यादा जिसको नहीं पालन करनी होती वो हर एक में नुक्स निकालेगा, ये ऐसा है ना, इसको पता नहीं कैसे बना दिया, ये है ना ये बहन जी की फेवरेट है इसलिए ऐसे कर दिया। बाबा ने हजार बार समझाया कि तुमको कुछ नहीं देखना, देवता तुमने बनना है या उसने, तो हम दूसरे को देवता बनाने के लिए बहुत उत्सुक है, किसी को ज्ञान ना मिले उसको बीकर बनाने के लिए तो बहुत ही उत्सुक है, लेकिन बाबा कहता है कि अपने को बनाने के लिए हम कहते हैं अच्छा ड्रामा होगा तो बन जाएंगे। इसलिए समय स्थान और विधि, अगर हम सारे दिन में इसका पालन कर लेते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी, सो स्थिति ऊपर। तो जब सो स्थिति ऊपर है तो परिस्थिति आप ही नीचे आ जाएगी, हम परिस्थिति को ऊपर कर देते हैं, है ना। राई का पहाड़ बना सकते हैं, हम पहाड़ की राई बना सकते हैं, रोज ही करते हैं, किसी की और की बात होगी तो छोटी बात को बड़ी करके ऐसे सुनाएंगे कि वो नीचे आ जाएगा तो मैं ऊपर चले जाऊंगा, मैं बहुत है। इसलिए बाबा कहता है कि हमको मैंने जानकी दादी जी से पूछा, मैंने कहा दादी जी ये व्यक्ति तो ऐसा है इसको तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, इसकी एक्टिविटी ऐसी है, आप कहते हो इसको प्यार करो, घृणा ना करो, कैसे करें, यज्ञ का नुकसान करता है। तो दादी थोड़ी देर बैठी रही चुपचाप, फिर कहती है देवता तुमको बनना है या उसको, कहती हो तुम इसलिए करो कि तुमको देवता बनना है। अब देवता तो प्यार करने वाले होते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, और तुम उसके देखो ये घृणा योग्य है। बाबा किसी से घृणा करता है? जब हम ज्ञान में आए थे तो कैसे थे, बाबा ने घृणा करी नहीं, अच्छे 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 कह के अच्छे कर दिया। इसलिए हमारा ऐनक ऐसा होना चाहिए कि हम हर चीज में शुभ देखें, तो ये ना देखे इसको रिस्पेक्ट देना है इसको नहीं देना, इसने मेरे साथ ऐसे किया था मैंने इसके साथ और भी ज्यादा करना है, ये दुनिया वाले करते हैं। किसी का कोई बाजू तोड़ दे तो ये नहीं कहते मैं हॉस्पिटल जाऊं, पहले कहते इसके मैं दो तोड़ूं तब मुझे ठंड पड़ेगी, मेरा भले टूटा रहे, ये दुनिया का सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ी सहन शक्ति यही है कि हम सब कुछ जानते हुए, शंकर जी ने कहते जहर पी लिया था तो हम सब देखते हुए इसी परिस्थिति में हम रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारी नींद ठीक समय खुलेगी, हमें किसी चीज में किसी से बात करने में मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो कहते ना बाबा इससे तो तू ही बात कर ले, और इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसके लिए ऐसे वाइब्रेशन भेजे हुए हैं कि एक दीवार खड़ी की हुई है मैंने जो दिखती नहीं है। तब बाबा कहता है कि बेहद का भगवान लिमिटेड हम, तो भगवान कहता है मुझे वो दिल अच्छा लगता है जो बेहद का हो, जो सच्चा हो, जो फराक हो। तो इसलिए ये हमारी धारणा है, तो हमारी अगर स्थिति अच्छी रहेगी तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कुछ नहीं है। अगर आप गुलजार दादी का किताब पढ़ें जो एक नर्स बहन ने लिखा है, उसमें आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी भी स्थिति आत्मा प्राप्त कर सकती है कि शरीर को कुछ भी हो रहा है उसको फील ना हो। हम सोचते थे कांटे जैसा तो फील होगा, लेकिन करी है, हम नहीं कर सकते क्या? इसलिए हमको ये देखना चाहिए जो हमको मिल गया जो प्राप्त है वो हमारा है, लेकिन ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम कंप्लीट हो गए। जिस दिन हमने समझ लिया हम कंप्लीट हो गए तो हमारी चढ़ती कला रुक जाएगी। हमें सीखना है, अभी भी हमारे अंदर कुछ बाकी है सीखने के लिए, ये इतनी बात है। एक बच्चा था, उस बच्चे को उसके पिताजी जमा करना सिखा रहे थे, तो बोले बच्चा 60 और 120 कितना होता है? उसने कहा 240। तो पिताजी ने कहा शाबाश तू मेरा नाम रोशन करेगा, तू मेरा बहुत लायक बच्चा है। नौकर को कहा इसको चॉकलेट ला के दो, शाबाश बच्चा शाबाश, 60 और 120 240। तो कोई गुजर रहा था उसने कहा ये कैसा व्यक्ति है, इसको खुद भी जमा करना आता है कि नहीं आता? पहले उसने सोचा आजकल किसी के मामले में इंटरफेयर करना ठीक नहीं, कुछ बोल देगा, पर उसे रहा नहीं गया। उसने कहा भाई साहब अब इसको क्या सिखा रहे हो, ये 60 और 80 240 कह रहा है और अब इसको शाबाश कर रहे हो? उसने कहा आपको पूरी बात पता नहीं है, कल इसने 340 कहा था। इसलिए जितने हमने प्रोग्रेस कर लिया उसकी मुबारक, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस किया नहीं, लेकिन तब बाबा कहता है कि तीनों कालों को देखकर तब कोई बात करोगे तो समझ में आएगी, लेकिन हमें बाकी करनी है। जब तक हम शरीर में हैं हम कर्मातीत नहीं है, और टाइम थोड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी करनी है। तो परिस्थिति को नीचे करने के लिए एक ही तरीका है, अपनी स्थिति को ऊंचा करें। इसी व्यक्ति ने एक लाइन खींची थी और कहा इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, पर इसको मिटाना नहीं, इसको इधर उधर से चेंज नहीं करना, छोटा करके बताओ। तो कोई बुद्धू था, उसने कहा मैं कैसे इसको छोटा कर दूंगा, ना इधर से तो कम करना है उसमें। एक समझदार था, उसने उससे बड़ी लाइन खींच दी, कहता देखो होगी ना छोटी। इसी वास्ते आप अपनी सोच स्थिति को ऊंचा करेंगे, पहाड़ से आपको मोटर कार भी माचिस दिखता है बस। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे को इतनी सोच स्थिति ऊंची करने के लिए वरदान देता हूँ, सम्मान देता हूँ, रोज पंपिंग करता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, सेवा का मौका देता हूँ, सहयोग देने का मौका देता हूँ, इससे ज्यादा बाबा कहते मैं खुद थोड़ी जाके तुम्हारी जगह परीक्षा दे आऊंगा। ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है।